हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आज फिर से नया पॉडकास्ट करने के लिए आ गए। सो रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। और ये रोज़े के सिलसिले में ऐसा होता है कि ज़्यादा वक्त इबादत में चला जाता है, तो वक्त ही नहीं मिला हमें पॉडकास्टिंग करने के लिए। लेकिन अगेन हम एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं, जो कि मधु सेठी जी की कहानी है और बहुत ही खूबसूरत है। और आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वॉइस मैसेज। ओके, सो अभी तो जो कोरोना वायरस है जो बढ़ते ही जा रहा है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें, इसमें ऐसे हालात जो है वो बहुत सारी लोगों को परेशान कर रहा है। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। कोशिश तो हर इंसान कर रहा है कि कुछ ना कुछ करें, और जो बिज़नेस वगैरह भी सब शट डाउन होकर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से हम घिरे हैं। अभी इस माहौल को हम लोग थोड़ा लाइट करते हैं और हम लोग थोड़ा अलग माहौल में चले जाना चाहते हैं, तो चलिए अब थोड़ी कोशिश हमारी ये है कि हम उस स्ट्रेस वाले माहौल से निकाल कर एक खूबसूरत से माहौल में ला सकें। सो, आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प अफसाना लेकर आ रहे हैं, मधु सेठी जी का सोने का पिंजरा। तो ऐसा होता है, उन दिनों वक्त कुछ उस पर मेहरबान न था। आए दिन वही बग बग झक झक फिजूल की बहस, बिला वजह का इसरार। वो तंग आ चुकी थी इन बातों से, दिल चाहता था कहीं दूर चली जाए, मगर जाती कहाँ, जाने से कोई फ़ायदा भी ना था और फिर लौटकर यहीं आना था। उन दिनों उसकी शादी की बात जोर शोर से चल रही थी, सब जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहता थे। हालांकि वह अभी 22 साल की भी नहीं हुई थी, 22 मीन्स 22 ईयर्स की भी नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर चल रहा था। मम्मा चाहती थी बस एग्ज़ाम्स के बाद उसकी शादी कर दी जाए। देर होने पर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, इसी चक्कर में उम्र निकल जाती है। अमल तो उनकी बहनों के साथ ऐसा ही हुआ था, बस मम्मा की शादी सही उम्र में हुई थी। उस वक्त पापा की जॉब अच्छी न थी, उन पर अपने घर वालों की भी जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से मम्मा शादी के बाद अपनी बहुत से ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकी। मम्मा की महरूमी और गरीबी को देखते हुए नानी ने फैसला किया था कि वो अपनी बाकी लड़कियों की शादी में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगी, उनकी शादी अच्छे खुशहाल घरों में करेंगी। मगर वो भूल गई, अच्छे रिश्ते अच्छे घरों में ही आते हैं। दो कमरों के क्वार्टर में रहने वाली लड़कियों के लिए बंगला कोठियों वालों के रिश्ते नहीं आते। फिर उन लड़कियों में ऐसी कोई ख़ास बात ना थी जो अच्छे रिश्ते आते। जिन अच्छे रिश्तों का वो इंतज़ार कर रही थी, उन्हें उन जैसे घरों का रास्ता भी पता ना था। उन लड़कियों के लिए दुकानदार, छोटी मोटी सरकारी और प्राइवेट नौकरियों वाले रिश्ते तो थे, मगर किसी डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन के रिश्ते नहीं थे। इस इंतज़ार में कई साल बीत गए। जब मम्मा के बाद की लड़की की उम्र 28 साल की हुई, तो नानी को हौल आने लगे। मम्मा भी परेशान रहती थी। एक दिन उन्होंने पापा से कहा, आप भी देखें, अगर देर हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रेखा के पापा जानते थे कि उनका बताया कोई रिश्ता उनके ससुराल वालों को कबूल ना होगा, इसीलिए उन्होंने कभी दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि वो भी अपनी सालियों के लिए फिक्रमंद रहते थे। मम्मा के इसरार पर उन्होंने अपने एक दोस्त के भाई के बारे में बताया, जो किसी प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था। वो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। कोई और वक्त होता तो शायद सरला देवी कभी तैयार न होती, मगर अब हालात दूसरे थे। उन्होंने भागते चोर की लंगोटी गनीमत समझ कर वो रिश्ता कबूल कर लिया। इस तरह मेरी मौसी के नसीब खुल गए। फिर नानी ने ख्वाब नहीं देखे, वो मुनासिब रिश्ते तलाश करने लगी। उन्होंने देखा था उनके दामाद राकेश, जो एक मामूली जॉब पर थे, अपनी मेहनत से तरक्की करके बड़े अफसर बन गए थे। घर में खुशहाली आ गई थी। उसी तरह दूसरे दामाद को भी अच्छी सरकारी जॉब मिल गई थी। यूं वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजारा था। फिर देखते देखते नानी ने बाकी की भी शादियाँ कर दी। सरिता थी देवी सब देख चुकी थी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसीलिए सरिता देवी के दिल में एक खौफ सा बैठ गया था, कहीं तारीख अपने आप को ना दोहराने लगे। वो जल्द से जल्द अपनी बेटी रेखा की शादी कर देना चाहती थी। रेखा के बीए करने के बाद ही सरिता देवी ने अपनी जान पहचान वालियों से उसके लिए अच्छे किसी रिश्ते के लिए कहने शुरू कर दिया था। उनके पति अब एक बड़े सरकारी अफसर बन चुके थे। सरिता देवी भी अपने अफसर पति की हैसियत का फ़ायदा उठाते हुए कई सामाजिक तंजीमों मीन्स संस्थाओं की मेंबर बन चुकी थी। इस मसरूफियात में वो घर से दूर होती गई, ज़्यादातर मीटिंग सोशल वर्क वगैरह में रहती थी। मगर इससे इतना फ़ायदा हुआ कि ऊंची सोसाइटी में उनकी पहुंच हो गई। इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि रेखा के लिए उन्हें अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मगर रेखा पढ़ना चाहती थी, उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। सरिता देवी की बेटी की ये बात पसंद ना आई। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और तुमने मुझसे पूछे बिना यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मम्मी इसे पूछने वाली क्या बात है बात थी। बीए के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना ही था। शादी की बात अभी रहने दे, मैं पहले अपने एजुकेशन पूरी कर लूँ। तो इस तरह से कहा, ठीक है मैं पढ़ने में तुम्हें नहीं रोकती, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो मैं उसे कबूल कर लूँगी। लड़की की शादी की एक उम्र होती है, मैं नहीं चाहती पढ़ाई के चक्कर में वो उम्र गंवा दो। मगर मम्मा मेरे लिए शादी से ज़्यादा एजुकेशन अहम है। अभी रेखा को यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए कुछ ही महीने हुए थे कि एक सुबह नाश्ते पर सरिता देवी ने रेखा से कहा, रेखा आज ज़रा जल्दी आ जाना, शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। रेखा के कानों में खतरे की घंटी बजने लगी। वो समझ गई मेहमान किस लिए आने वाले हैं। सॉरी मम्मा आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, शाम तक आऊँगी, वो इत्मीनान से बोली। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जल्दी आना है, वो लोग 5 बजे आ जाएंगे। मम्मा भड़क गई। मम्मा वो आपके मेहमान हैं, आप ही उन्हें कंपनी दे, मेरे होने ना होने का क्या फर्क पड़ता है। रेखा ने कहा, बेवकूफ लड़की, वो तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा होना ज़रूरी है। तो यूँ कहिए ना, पहला पत्थर आ रहा है, मैंने गलत तो नहीं कहा ना, उसने तंजिया लहजे में कहा। रेखा फजूल बात मत करो, बहुत अच्छा रिश्ता है, उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया, सो तुम्हारी किस्मत खुल गई। यानी सारी बातें अगर अगर पर है तो अगर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो ठीक, वरना नहीं। यही कहना चाह रही है? रेखा का लहजा तीखा हो गया। हाँ यही तरीका है। अच्छा और अगर उन्हें पसंद ना किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम यूँ ही मेरे सूने पर मुंह दलती रहना, सरिता देवी ने गुस्से से कहा। मम्मा मुझे घर बैठना मंजूर है, मगर ये पसंद नहीं कि मुझे जानवर की तरह परखे टटोले फिर अपना फैसला सुनाकर चल दे। ये हक दोनों पार्टियों का होना चाहिए। आप चाहती है कि मैं आपके मेहमान के सामने पेश हूँ तो उनसे भी कह दे लड़के को साथ लाए ताकि मैं भी फैसला कर सकूँ, कहकर वो उड़ गई। सरिता देवी उसे देखती रह गई। वो उसे बताना चाह रही थी कि लड़का तो इंग्लैंड में है, वो भला शाम को कैसे आ सकता है। रेखा यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसका मूड खराब था। वो सोचों में खोई हुई थी कि उसकी गहरी दोस्त कल्पना ने उससे पूछ लिया, क्या बात है रेखा डियर, इतनी चुप क्यों हो? खोई खोई कैसे हो? यार क्या बताऊं, मम्मा हाथ धो के पीछे पड़ गई है, आते वक्त कह दिया कि जल्दी आना, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। अरे तो परेशान की क्या बात है, रिश्ते यूं ही तय होते हैं। तुम मेरी बात नहीं समझी, रेखा झुलस गई। मेरा कहना है वो वन वे ट्रैफिक क्यों? जिस तरह लड़के वाले लड़की को पसंद करने या ना पसंद करने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह मेरे घर वाले और मुझे भी हक होना चाहिए किसी को पसंद या ना पसंद करने का। तुम्हें किसने रोका? अगर तुम्हें ये या घर वालों को रिश्ता पसंद नहीं है तो इस रिश्ते से इनकार कर सकती हो। ये बस कहने की बातें, ऐसा होता कहाँ है, यहाँ तो बस लड़के वालों की चलती है। लड़की वाले तो हाथ बांधे खड़े रहते हैं। मैं समझी नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कल्पना बोर हो गई। मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं बराबरी चाहती हूँ, मैं किसी के पाँव की जूती बनना पसंद नहीं करूँगी। शादी का मतलब ये नहीं कि लड़की अपना सब कुछ मर्द के हवाले कर दे, अपनी सोच, अपनी जहन, अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी सब गिरवी रख दे। मैं उस शख्स के साथ शादी करना चाहूँगी करूँगी जो मेरे मामलात में अपनी मर्जी ना चला, ना उसके घर के लोग मुझे डिटेक्शन दे। मेरी मर्जी है नौकरी करूँ या घर में बैठूँ, अपनी कमाई बैंक में जमा करूँ या चाहे जिस पर खर्च करूँ। मेरे ऊपर उसके घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, नहीं कहीं आने जाने के लिए किसी की इजाज़त लेनी होगी। बस बस मैं समझती हूँ इस देश में तो तुम्हें ऐसा मर्द मिलने से रहा। तुम जानती हो हमारा समाज मर्दों का है या उनकी ही चलती, औरत को अपना बराबर का समझना मर्द तौहीन समझता है, अपनी तौहीन समझता है अपनी। मेरा ख्याल है ये सब बातें कहना भी मत, वरना माँ बाप के घर ही बैठी रहूँगी। ठीक है मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का सौदा नहीं कर सकती। मैं ऐसे मर्द को पसंद करूँगी जो भले गरीब हो मगर औरत की बराबरी का कायल हो। देखो रेखा, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है, हकीकत कुछ और है। बिना पैसे की खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मैं समझती हूँ मैं तुम्हें अपनी बात समझा नहीं सकती, इसीलिए ये बहस ख़त्म करो, शाम को जो होगा तुम्हें कल बता दूँगी, रेखा ने बेजारी से कहा। शाम की कार्रवाई बड़ी फीकी और बेरौनक सी रही थी। रेखा का ख्याल था कि मिसेस राकेश के साथ लड़के की माँ, भाभी बहनें और एक हाथ तेज तरार कज़न भी आएंगे, मगर सिर्फ लड़के की माँ आई थी। उन्होंने ही रस्मी सी बातें की और लड़के की तस्वीर देखकर वापस की राह ली। तस्वीर के पीछे लड़के अशोक कुमार का इंग्लैंड का पता, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी लिखा था। रेखा लड़के की माँ के जाने के बाद माँ से बोली, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि लड़का इंग्लैंड में है? अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम कल करते हैं, ठीक है? तो काफ़ी लंबी होगी, 12 मिनट हो चुके हैं। सो कल हम इसके आगे की कहानी बताएंगे। सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय।